साधना करते करते एक साधक ऐसी अवस्था में पहुंचा कि उसे लगा अब बिना यथार्थ गुरु के साधना आगे नहीं बढ़ सकती। जितना जानना था, जितना पाना था, जितना समझना था किताबों से, शास्त्रों से, पंडितों से, शास्त्रार्थ से, धर्म चर्चाओं से, धर्म सम्मेलनों से, सत्संगों से, सब कुछ जाना, सब कुछ समझा, फिर भी ये बेचैनी क्यों? उसे लगा कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें कोई दिव्यता हो, कोई ऐसी अतिमानवीय शक्ति हो जो मुझे उठाकर अपने ही तल पर ले आए। उसने बहुत खोजबीन की, ऐसा व्यक्ति से नहीं मिला। वो ढूंढता रहा। किसी ने उसे कहा कि हिमालय पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति है, पर वो किसी से मिलता नहीं है। वो कहाँ है हिमालय पर वो भी नहीं पता, और जैसे ही लोगों को पता चल जाता है वो वहां है, वो अपनी जगह बदल देता है। ऐसा अज्ञात एक गुरु है, तुम उसकी खोज में जाओ। ये साधक पहले ही साधना करते करते बूढ़ा हो चुका है, फिर भी हिम्मत जुटाता है, पैसे जुटाता है, सब कुछ करता है और वहाँ हिमालय पर पहुँचता है। लोगों से पूछता है, क्या ऐसा कोई गुरु यहाँ है हिमालय की चोटी पर? वो लोग कहते हाँ, पर वो कहाँ है पता नहीं, पर है जरूर कोई प्राचीन व्यक्ति, कोई प्राचीन गुरु, वहीं घूमते रहता है वो। ये साधक उस गुरु की तलाश में हिमालय पर जाता है, अलग अलग जगहों पर लगभग 2 साल तक भटकता फिरता है। हालत खराब हो जाती है, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, जो कुछ मिल रहा है फल फूल पत्तियाँ सब कुछ खा रहा है, परंतु वो गुरु का कोई नाम निशान नहीं। हिम्मत अंदर से टूट रही है, ज्ञान की पिपासा है, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है, समझ चाहिए। वो कैसे मिले? अपनी उसकी जितनी बुद्धि थी, जो कुछ साहित्य था संसार में, वो सब कुछ पढ़ के हो चुका था। इसलिए ये इच्छा जागृत हुई थी कि कोई हायर पावर मुझे ऊपर उठा ले। और संसार क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ये एग्जिस्टेंस क्या है, मुझे समझ में आए। वो जिसे भगवान कहते हैं वो कौन है भी या नहीं, या केवल कल्पना है, और है तो उसका रूप स्वरूप क्या है। इतनी तड़प थी अंदर जानने की, परंतु अंदर से हिम्मत टूटती जा रही थी। गुरु कहीं नहीं मिल रहा था, कहाँ ढूंढे उसको। प्राचीन भटकते भटकते 2 साल हो गए, और एक दिन अचानक से एक झोपड़ी दिखी। वो भागा आशा से भरा हुआ, यही वो स्थान होगा। झोपड़ी में पहुंचा पर अंदर गया तो दिखाई दिया, सदियों से शायद इस झोपड़ी में कोई ना आया है, वह चीजें ऐसी रखी थी, बर्फ ही बर्फ, सूरज की किरणें ऊपर से गिरती हुई। वो बाहर निकला और उसने कहा, आई क्विट, मैं हार मानता हूँ। धड़ाम से नीचे गिर गए। उसने कहा कि मैं हार मानता हूँ, अब मुझसे नहीं होता। गिर गया बर्फ पर, सूर्य की नाचती हुई किरणें उसके शरीर पर जिस समय उसने ये कहा कि अब मैं हार मानता हूँ और गिर गया, एक अजीब सी शांति की उसे अनुभूति हुई, और पीछे से जैसे कोई झुका उसकी ओर, कोई छाया, और एक आवाज आई कि तुम आ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति, वही प्राचीन तपस्वी योगी, उम्र पता नहीं कितनी, 200 वर्ष या 300 या 500, लोग कहते थे वो कई सदियों से यहाँ पर घूम रहा है। वो आवाज उससे कहती है, वो खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति उससे कहता है, क्या तुम्हारे मन में अब कोई प्रश्न है? वो कहता है, कोई प्रश्न नहीं है। वो ढूंढ उसे रहा था और अब वो सामने है। जब पूछा कोई प्रश्न, वो कहता है कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा क्यों हो गया, प्रश्न कहाँ खो गए? वो मिलने से पहले ही मिल गया। क्यों? जैसे ही उसने कहा कि मैं हार मानता हूं, उसी क्षण एक ऐसी अवस्था आ गई, क्योंकि ये सारा जो ढूंढ रहा था वो कौन ढूंढ रहा था? वो मैं ढूंढ रहा था, एक ईगो ढूंढ रहा था। जिस क्षण वो अहंकार गिर गया, खो गया, और उसने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, जैसे मैं अपनी हार मानता हूं, उसी क्षण वो सामने आ गया जिसकी तलाश थी। यही अध्यात्म की शुरुआत है, अंत भी समग्र समर्पण, इंटीग्रेटेड सरेंडर, वास्तविक समर्पण, जहां वो जो अंदर बैठा है और जो कहता है मैं जानता हूं, मुझे पता है, वो गिर जाए और ये भाव आ जाए कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तब वास्तविक योग की यात्रा चालू होती है या फिर अध्यात्म या धर्म चालू होता है। ज्ञान का सबसे बड़ा दोष क्या है? उपनिषदों में बड़ा ही विरोधाभासी वाक्य लिखा हुआ है कहीं कि अंधकार, अज्ञान जो है वो क्या है? अंधकार। परंतु ज्ञान है महाअंधकार। क्यों? क्यों? क्योंकि हर छोटे ज्ञान के साथ में हमारे साथ क्या जुड़ जाता है? अभिमान, अहंकार तुरंत जुड़ जाता है। इसके लिए जानते हुए भी हम कौन रहे? अज्ञानी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इग्नोरेंट नॉलेज। क्या कहते हैं इसे? इग्नोरेंट नॉलेज। नॉलेज तो है पर कौन सा ज्ञान? अज्ञानी ज्ञान, अबोध ज्ञान। ये ज्ञान अभी पूर्णावस्था को नहीं पाया है, बचकाना है, चाइल्डिश है, अपूर्ण है, अधूरा है, हाफ नॉलेज है। तीन चीजें हैं, एक है चाइल्डिश नॉलेज, बचकाना ज्ञान, एक है हाफ नॉलेज, अपूर्ण ज्ञान, एक है नॉलेज विथ ईगो। ज्ञान तो है पर अकड़ बहुत है। हम जानते हैं तुम नहीं जानते, हमें पता है तुम्हें नहीं पता। सुनो अब तुमको सुनाते हैं आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है और तीन लोक क्या है और ये युग कौन सा है और ये ब्रह्मा कौन है। तुम्हें नहीं पता, हम तुमको समझाएंगे। इस अकड़ से चेतना भरी हुई है कि हमने जाना है। और अहंकार पुष्ट भी हुआ है कहां से? मुरलियों के ही वाक्यों से कि तुमने जाना है, उन्होंने नहीं जाना। और भगवान ने कहा है तुमने जाना, पर उसने ये भी कहा है कि तुम में से भी कोटों में कोई में से भी कोई मुझे जानता है। और ये भी कहा है मैं जो हूं जैसा हूं वो जब तुम्हारी ऊंची अवस्था हो जाएगी तो ही तुम जानोगे। जब तुम स्वयं को संपूर्ण रूति से जान जाओगे तब तुम मुझे जान जाओगे। उसे जानने का पुरुषार्थ ही नहीं है, जानना है खुद को। हमने अपने आप को ही नहीं जाना तो उसको कैसे जान सकेंगे? आत्मा अपने आप को ही नहीं जानती तो परमात्मा को तक को कैसे जाना जा? हाँ, उसके बारे में सूचनाएं बहुत हमने इकट्ठा कर रखी है, ज्योति बिंदु, उसका ये नाम, उसका ये रूप, ये यहाँ रहता है, ये करता है, तब आता है, अब आता है, आकर ये सुनाता है, आकर वो सुनाता है, चला जाता है। सूचनाओं को ही हमने पकड़ कर ज्ञान समझ रखा है। एक है इन्फॉर्मेशन, एक है नॉलेज, एक है विजडम। सूचनाएं हैं वो केवल, उसके ऊपर ज्ञान है। ज्ञान अर्थात सूचना प्लस अनुभव, उसके भी ऊपर है प्रज्ञा। वहां अपने आप ही पता चलता है वास्तविक ज्ञान क्या है। तो ये जो इग्नोरेंट नॉलेज है ये ज्ञान नहीं। और ज्ञान को यदि समझना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ज्ञान पूरा समझ में आ जाए, ज्ञान सूचनाएं नहीं, 7 डेज का कोर्स नहीं, साकार और अव्यक्त मुरलियां नहीं, वो भी सूचनाएं ही है, वो भी ज्ञान नहीं है, वो सारी सूचनाएं हैं। जितनी अव्यक्त, कितनी अव्यक्त मुरली है? 1068 टोटल अव्यक्त मुरली है विदाउट एनी रिपीटेशन। जितनी एक्चुअल चली है इतनी अव्यक्त मुरलियाँ है 69 से लेके तो 2017 के बीच तक, जब तक बाबा आए, वो नहीं जो रिपीट हुई है उसका कैलकुलेशन। ये सब भी सूचनाएं ही हैं। जब तक वो अनुभूति पर ना उतरे वो सूचना है, जब वो अनुभूति बनेगी तब उसे ज्ञान कहा जाएगा। तो ज्ञान को समझने की, पाने की, ज्ञानी होने की या ज्ञान के पूर्ण प्रकाश से भर जाने की विधि कौन सी है? हार मान लो सबसे पहले। हाँ ये ठीक है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम समझाओ। अब बाबा के सामने तो बैठते हैं पर ज्ञानी होकर बैठते हैं, एकदम ज्ञान से भरे हुए, लबालब ज्ञान के अहंकार से, पता हमें कुछ नहीं है। और बाबा को सुनाते हैं, बाबा को ये सिखाते हैं कि तुम्हें तुम भगवान हो पर अच्छा भगवान कैसे बना जाए, हाउ टू बिकम वाइसर गॉड, इसकी ट्रेनिंग हम उसे योग में देते कि तुम्हें ये नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसका कल्याण, तो हम ट्रेनिंग देते उसको, गॉड को, टू बिकम वाइजर गॉड, बेटर गॉड। तो ज्ञान को सीखने की, समझने की, जानने की, ज्ञानी बनने की, ज्ञान के प्रकाश से भरने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, या फिर एकमात्र विधि कौन सी है? साइलेंस, संपूर्ण समर्पण और गिड़गिड़ाना, रोना भक्तों की तरह। इसके लिए तो बाबा ने मना किया है। आज की मुरली लास्ट लाइन, अच्छा से पहले मम्मा बाबा कहते, कहने से कुछ नहीं होगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। सरेंडर, प्यूरिटी, एकांत, मौन, समर्पण, आई क्विट, ये सब तो है, पर ज्ञान समझ में आता है केवल और केवल योग की अवस्थाओं में। ज्ञानी बनने की विधि है योग। वैसे तो ज्ञान फर्स्ट फिर योग, परंतु योग फर्स्ट फिर ज्ञान। योग की संपूर्णता के बिना ज्ञान की संपूर्णता नहीं है। योग लीड्स टू ज्ञान। ये जो योग है यही सबसे बेसिक है। क्यों? योग की अवस्थाओं में ही कुछ कुछ महावाक्यों का स्पष्टीकरण होता है। वैसे कितना भी पढ़ लो, कितना भी डिस्कशन कर लो, कितना भी एक टॉपिक पर भाषण दे दिया किसी व्यक्ति ने, जरूरी नहीं है कि उसे वो पता है, जाना है उसने, या उसके जीवन में आया है। योग की सूक्ष्मतम अवस्थाओं में ही ज्ञान का स्पष्टीकरण होता है, क्योंकि ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, उसको समझने के लिए उतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। कल की मुरली थी ना, दिव्य जन्म, दिव्य जीवन, दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, दिव्य संबंध, दिव्य धन, ये सब तुम्हारे पास होगा तब तुम दिव्य मूर्ति बनोगे। दिव्य अर्थात नॉन फिजिकल, शारीरिक नहीं, पार्थिव नहीं, दिव्य, डिवाइन, साधारण नहीं। तो ये जो योग है, अगले 3 दिन हम इस योग, कहो 3 शब्द है, एक है योग, एक है मेडिटेशन, एक है ध्यान, तीनों में क्या अंतर है? एक इंग्लिश है, एक हिंदी, और तीसरा संस्कृत। संसार में कई प्रकार के मेडिटेशन है, कई प्रकार के, हजारों प्रकार के मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई नई चीज नहीं है, लोगों ने हर रीति से ट्राई किया है, पर बहुत सारे मेडिटेशन शरीर में ही घूमते हैं, पर उसी शरीर के मेडिटेशन के आधार से उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली। भगवान जो सिखा रहा है वो राजयोग, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट। तो एक तो हर व्यक्ति को ये भी स्टडी करनी है कंपैरेटिव, कि ये मेडिटेशन भगवान कह रहा है हाईएस्ट है, पर क्यों है, कैसे है, और इससे क्या प्राप्ति है। जब उन्हीं मेडिटेशन से, एक मेडिटेशन होता है माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट मेडिटेशन, इसमें शरीर में बिंदु है, 1, 2, 3 पीछे, सुब पीछे, इधर यहाँ से चालू करके पीछे तक जाते हैं, यहाँ 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 यहाँ, वो एनर्जी को घुमाते हैं। एक है चक्र मेडिटेशन, यस, जो चक्र है, एक एक चक्र को एक्टिवेट करते करते ऊपर ऊपर उठती जाती है चेतना, चक्र मेडिटेशन, माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट मेडिटेशन, कितने प्रकार के मेडिटेशन है, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन, जिसमें केवल बॉडी को ही स्कैन किया जाता है, ब्रेथ मेडिटेशन, माइंडफुल मरकाबा मेडिटेशन, पिरामिड, 2 पिरामिड है, जैसे उसमें ये सोचा जाता है कि ये जो शरीर है, क्योंकि पिरामिड में बहुत पावर होती है। बेंगलुरु गए, वहीं वहाँ है बहुत बड़ा, ओआरसी में भी जो बना है वो तो छोटा है, वहाँ खास वो जो पिरामिड मेडिटेशन करते हैं, ये जैसे हम बैठे हैं मेडिटेशन में, एक पिरामिड तैयार करना है इमेजिनरी, ये बेस उसका और यहाँ उसका पॉइंट एक, और एक पिरामिड उल्टा, ये बेस और वो नीचे, और ये दोनों पिरामिड अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, एंटी एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, और उसमें वो मेडिटेशन करते हैं, ऊपर से लाइट आ रही है एक। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन लोगों ने ढूंढे हैं और उसमें इतनी नवीनता लाई है, और वो लोगों को सिखाते भी है मुद्रा, जैसे बुद्ध बैठे इस पोस्चर में, इस चिन्ह मुद्रा, ये मुद्रा, वो मुद्रा, अलग अलग ब्रह्म मुद्रा, अलग अलग मुद्राओं में ये मुद्रा, उस मुद्रा मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, मरकाबा मेडिटेशन, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट मेडिटेशन, विपाशना मेडिटेशन, कितने प्रकार के डायनामिक मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, नाद योगा, ब्रह्म योगा, अलग 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 मेडिटेशन है, और उसमें नवीनता लाते रहते हैं वो लोग। हमारा कौन सा है द हाइएस्ट? क्या नवीनता हमने लाई है? जीरो। मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, फरिश्ता, इसको सकाश, उसको सकाश, चलो काम पूरा हुआ, कारोबार में लग जाओ। जब तक हम अपनी मेडिटेशन में नवीनता नहीं लाते, क्योंकि मेडिटेशन इज द फाउंडेशन, नींव है, बिना योग के ज्ञान को समझा ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। 10 बार मुरलियां पढ़ लो, 10 क्लास करा लो, 10 क्लास सुन लो, नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो उस ज्ञान का, ज्ञान को बिना योग की अवस्थाओं की सूक्ष्मता के समझा ही नहीं जा सकता। योग में कुछ बातें स्पष्ट होगी, कुछ ऐसी बातें जो रोज रोज पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं दूसरों को, पर स्पष्ट नहीं हुई है, वो स्पष्ट होगी अशरीरी स्थितियों में, क्योंकि ज्ञान अशरीरी है, निराकार है ज्ञान। बाबा ने तो खुटियों को यूज किया है अपनी बातें क्लियर करने के लिए, संसार की वस्तुओं को, उदाहरणों को उसने खुटियों के रूप में प्रयोग किया है, जैसे वो सूर्य किरणें फैलाता है, कौन सा सूर्य, काहे का सूर्य, जैसे वो सारी मुरली मतलब क्या है, उदाहरण, कहाँ के उदाहरण दे रहा है वो, इस दुनिया के, क्योंकि ज्ञान इज एब्स्ट्रैक्ट, उसको सीधा नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए यहाँ के उदाहरण देते देते समझाया उसने, पर पहुंचना हमको उसी अवस्था में है, इसलिए अधिक से अधिक समय किस अवस्था में रहने का अभ्यास, परम धाम, निराकारी निराहारी, उसी स्थिति में ज्ञान को बहुत गहराई से समझा जा सकता है। इसके लिए अपने इस भट्टी, आज का कितवा दिन है, 17वां, आज तो 17वां दिन है, पहले दिन एक पॉइंट कही थी, कौन सी, योग को बढ़ाते जाना है, और योग मतलब केवल एक ही रीति से योग नहीं, केवल बात करना, केवल किरने लेना, केवल ये योग नहीं है, योग की परम धाम की अवस्था में ज्ञान की कोई एक पॉइंट इमर्ज करके अपने आप उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करना, क्या अर्थ है उसका, क्योंकि वहां जो एक है साकार वतन में ज्ञान का अध्ययन, एक है सूक्ष्म वतन में ज्ञान का अध्ययन, एक है परम धाम में ज्ञान का अध्ययन, मुरली लेके वहीं पहुंचो। ये जो वतन है यहां मुरली स्टडी के लिए, मल्टीपल टाइम यहां डिस्कस करो, स्टडी करो, सब कुछ कर लो, फिर यहां पर वो शेयरिंग के लिए है, सूक्ष्म वतन बाबा को बताओ, और ये जो है ये मुरली अंडरस्टैंडिंग के लिए, परम धाम, यहां समझ में आएगी, यहां तो स्थूल स्थूल, आत्मा समझ के बाप को याद करो, दिव्य गुण धारण करो, मौत सामने खड़ा है, विनाश होने वाला है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, 3 बिंदी को याद करो, तुम्हारे आंखों में वो, हाथों में वो, नैनों में वो, होठों में वो, तुम्हारे पैरों में ऐसा, तुम्हारे पैरों में वैसा, तुम ये हो, राज दुलारे हो, तुम ये हो, तुम यो हो, याऊ हो, त्याऊ हो, ये सब इधर है। यहां जो कुछ पढ़ा वो पढ़ना भी इतनी गहराई से कि याद हो जाए, एक एक पॉइंट याद हो जाए, ये फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए फिर डिस्कशन करो, सब करो, और डिस्कशन करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के, ज्ञान एक व्यक्ति बैठा है सुना रहा है, दूसरे सुन रहे हैं, या ये डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन अलग चीज़ है, आर पार, बैठे चार लोग और डिस्कस करो ये क्या बोल दिया, ज़रूरी नहीं सारा ही मानना है उसमें से, उसका डिस्कशन होना चाहिए। तो माइंड में जो ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस, जो पॉइंट्स कि ये पॉइंट्स प्रैक्टिकल में कैसे लाए, तो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा डिस्कशन हो हर दिन दो लोगों के, दो डिस्कशन के लिए दो लोग जरूरी है। अगर कोई भी नहीं है तो अपने साथ ही आईने के सामने बैठकर डिस्कस करो, पर डिस्कशन जरूरी है, पर ये सब लोएस्ट स्टेज है। शेयरिंग, फिर जो सुना है, नेक्स्ट शेयरिंग इन सूक्ष्म वतन, और समझ उसकी जो आएगी वो अमृत वेला परम धाम में, क्या है वो, अचानक से स्ट्राइक होगा, अच्छा ऐसा है। तो फाउंडेशन क्या है हमारे जीवन का, मेडिटेशन, हर चीज का फाउंडेशन, ये जो प्राणिक लिविंग, इस सब का फाउंडेशन मेडिटेशन ही है, बिना इसके आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। हमारे ज्ञान सुनाने का तरीका तो बहुत इम्प्रूव हो गया है, सेवा करने का तरीका इम्प्रूव हो गया है, पर मेडिटेशन में हमने कितनी नवीनता लाई है, केवल कोई मेडिटेशन करा रहा है और हम कर रहे, वो करा रहा है, उसका हमारे योग से क्या संबंध, गाइडेड मेडिटेशन वो KG1 KG2 के बच्चों के लिए, जो पीजी में जाकर पीजी में चले गए उनके लिए नहीं है, वो योग कराते तो बहुत अच्छा योग लगता है, वो कमेंट्री से योग कराते तो एकदम बाबा के पास पहुंच जाते, ये भ्रम है तुम्हारा, योग अर्थात वहां दूसरा है ही नहीं, तुम हो, वहां आवाज नहीं है किसी की, वो इनिशियल बैसाखिया है, ठीक है, अब तोड़ो उनको, छोड़ दो ये ट्रांसलाइट, ये सॉन्ग, ये रेड लाइट, ये सब KG1 KG2 किंडरगार्टन है, हाँ उसने अच्छी मदद दी, तो हमारा योग निराधार हो जाए, निराकार योग निराधार ही होना चाहिए और निराहार भी। तो ये मेडिटेशन जो है ये बहुत सारी चीज़ें करता है, 100 बातें हैं, एक एक बात हम देखेंगे, पीछे से ही चालू करते हैं, ये मेडिटेशन क्या क्या करता है और साथ साथ इस मेडिटेशन को कैसे हम उसमें नवीनता भर दे, कुछ ऐसा मेडिटेशन जो आज तक किया ही नहीं कभी, वो करके देखे। मेडिटेशन गिव्स यू एन एस्केप, 100 फायदे बताए हैं मेडिटेशन के। सबसे पहला क्या कर देता है वो, एस्केप, नींद में सोने के बाद हम दूसरे दिन इतने फ्रेश क्यों रहते हैं, क्योंकि नींद में क्या हो जाता है, अशरीरी अवस्था में हम चले जाते हैं, जो विचार है ये हलचल है, ये सब विचारों का जगत है, हम मन शांत हो जाते हैं, अमन की अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए उठने के बाद बहुत फ्रेश महसूस होता है, निद्रा प्रगाढ़, गाढ़ निद्रा जिसको आती है ना, वो बड़े एंथुजियास्टिक रहते, चार्ज्ड रहते एकदम, और जिनको नींद ही अच्छी नहीं है वो कभी स्वास्थ्य क्या है उसका अनुभव नहीं कर पाते, उमंग उत्साह का अनुभव नहीं कर पाते, उठते ही चिड़चिड़ापन, उठते ही अजीब सा लगता है कि आज भी नींद नहीं हुई, और नींद हुई भी तो कितनी बार पंक्चर बीच बीच में, 1 बजे आँख खुली, 2 बजे आँख खुली, वो लोग बहुत सुखी है संसार में जिनको बहुत अच्छी नींद आती है सो गए तो सीधा जितने बजे उठना है उतने ही बजे उठते, बीच में नो डिस्टर्बेंस, चाहे कुछ भी हो जाए ढोल बजते रहे वो नींद, क्यों नींद में हम चार्ज होते हैं, क्यों नींद में क्या हो रहा है, एक तो विचार एकदम शांत, किसी को बहुत दर्द है सो जाता है, नींद में दर्द गायब हो जाता है, जब उठता है तो फिर दर्द चालू हो जाता है, तो हम दर्द रहित अवस्था में पहुंच जाते हैं, पेनलेस स्टेज, थॉटलेस स्टेज, अशरीरी स्टेज, इसलिए उसमें पावर है। जो कुछ नींद में होता है, नींद जो है वो अनकॉन्शियस मेडिटेशन है, और मेडिटेशन जो है वो कॉन्शियस स्लीप है, इसमें एनर्जी दोनों में जमा होती है, इसलिए दोनों बहुत जरूरी है, नींद भी और मेडिटेशन भी। हाँ, नींद में 20% तो मेडिटेशन में 80% एनर्जी जमा होती है, अगर उसको उसी रीति से किया जाए तो। सबसे मेडिटेशन नींद कर लो तो कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। सबसे पहला फायदा एस्केप। क्या एस्केप? ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जैसे नींद में सब भूल जाता है थोड़े समय के लिए, उसी तरह मेडिटेशन में वो सारा भूल जाए, एस्केप हो जाए इन सब चीज़ों से, तो आत्मा में पावर भरेगी। जैसे ही आत्मा विचारों से रहित होने लगती है उसमें पावर भरने लगती है, जैसे ही आत्मा देह से डिटैच होने लगती है पावर भरने लगती है, मन से डिटैच हो जाए और बॉडी से डिटैच हो जाए अपने आप एनर्जी उसमें भरनी चालू होती है। माइंड से डिटैच अर्थात निर्विचार अवस्था या फिर कम विचार वाली अवस्था, द स्टेज ऑफ नो माइंड इसको कहते हैं, नो माइंड, मनोनाश। योगियों ने कहा है मन का ही नाश हो जाता है, योगियों ने कहा है अमन, बाबा ने कहा है मन मनाभव। ये पॉजिटिव डेफिनेशन है, वो निगेटिव डेफिनेशन है। इसमें भी जैसे लीन अवस्था हो गई है, उसमें बाबा से कुछ बात नहीं कर रहे, अपने आप विचार कम हो गए, स्वमान हायर कॉन्शियसनेस है। जैसे जैसे स्वमान में आत्मा टिकने लगती है, रिपीट नहीं करती है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, नहीं, वो स्वरूप में जब टिक जाती है तो शब्द खो जाते हैं, वहाँ अमन मनोनाश, एक निर्विचार अवस्था आ जाती है, शांत स्थिर अवस्था। वो अवस्था में आत्मा में एनर्जी भर जाती है, वो अवस्था है कि जिसमें वो विकर्म विनाश होने लगते हैं। तो सबसे पहला फायदा मेडिटेशन का, एस्केप। दूसरा, सेंस ऑफ पर्पस। हम क्यों है यहां पर, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सेंस ऑफ पर्पस योग की अवस्था में ही पता चलता है। ब्राह्मण तो बन गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, कर क्या रहा हूं, करना क्या है, जो उस दिन भी बताया था सजगता में। जैसे ही सजगता की साधना में क्या है, जैसे ही कहीं पर भी योग में बैठो, सबसे पहले कुछ सेकंड, कुछ मिनट इस बातों में बिताओ, समय कौन सा चल रहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, लोग कौन से हैं, शरीर में संवेदनाएं क्या हो रही है, श्वास कैसी चल रही है, फिर योग की शुरुआत थोड़े समय के लिए। अमृत वेले उठे 3 बजे, बाबा के कमरे में बैठे, कहाँ बैठा हूँ, समय कौन सा है, स्थान कौन सा है, ये लोग कौन है, मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूँ, ये एक विचार लाते ही साधना से पहले, क्योंकि हम साधक है, मन एकाग्र हो जाता है। नहीं तो बस वो अवस्था जो बेड पर थी वही अवस्था योग में भी है, उसी का कंटिन्यूएशन, एक्सटेंडेड स्लीप। अमृत वेला जो बेड पे चालू था वही, उसको एक्सटेंड इधर कर लिया और फिर वापस उधर, तो तो सेंस ऑफ पर्पस मेडिटेशन से क्या मिलता है, सेंस ऑफ पर्पस, ये है दूसरा। अगला, बहुत सारी चीजें मेडिकल की ही है इसमें, वो हम बाद में लेंगे। फिर उसके बाद में हार्मोनाइज विथ रियलिटी, अर्थात जो सत्यता है। सारे दिन भर हम एक भ्रम जगत में जीते, एक दीवा स्वप्न की अवस्था में, सत्यता से बहुत दूर। मुरली सुन रहे तो बहुत अच्छी अवस्था है, अमृत वेला ठीक थे, जैसे ही दिनचर्या में उतरे वो मुरली रह गई बाजू में और अमृत वेला रह गया बाजू में, कुछ और ही चालू हो गया। यहाँ पर बेहोशी की अवस्था 5 बजे तक, 6 बजे तक, 6 बजे नुमा शाम में फिर जागृति, बीच में बेहोशी, तो होश बेहोशी फिर होश, किसी किसी रात में फिर बेहोशी, माया आक्रमण करती है। तो ये सारा जो हो रहा है हार्मोनाइजेशन विथ रियलिटी क्यों हो रहा है, बिकॉज वी डू नॉट एक्सेप्ट स्पेसिफिक सिचुएशंस इवेंट्स और इवन द वेज वी रिएक्ट। मेडिटेशन हमको ये सिखाता है, एक दो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटरिंग एंड डिसेंटरिंग। क्या होते हैं ये, मेडिटेशन क्या करता है, सेंटरिंग सिखाता है। अगर हम, ये एक सर्कल है, ये मैं हूँ और ये परिधि है, हम परिधि पर जी रहे, यहाँ पर सेवाएं है, यहाँ पर हमारी खान पान है, बोलचाल है, डिपार्टमेंट है, सेवा सब कुछ है, संबंध है, यहाँ जी रहे, ये सेंटर है, ये गृहस्थ है, ये ट्रैवल है, सब कुछ इस तल पर। हम डिसेंटर्ड लाइफ जी रहे, बहुत दूर। सेंटरिंग मतलब केंद्र की तरफ चलना। तो हमारी योग में हम क्या हो जाए, ये सबसे डिटैच हो जाए। आज की मुरली में बाबा हमने आपसे कहा था, जब तुम आओगे हम किसी से भी ममत्व नहीं रखेंगे, किसी से भी ममत्व नहीं रखेंगे। ज्ञान में आने के बाद उत्पन्न हुए जो अटैचमेंट्स है बहुत डेंजरस है। ज्ञान जैसे आए तब तो सब तोड़ताड़ दिया, पर यहां आने के बाद जो ज्ञानियों के साथ अटैचमेंट्स उत्पन्न की है, इस परिवार में अटैचमेंट उत्पन्न की है, वो जल्दी नहीं छूटते, क्योंकि हमने उसके साथ में थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, परिवार है, ये है, वगैरह वगैरह, हिसाब है, ये है। बट सेंटरिंग क्या है? सेंटरिंग अर्थात सबको बाहर छोड़ दो, सभी को, कोई भी अंदर नहीं है, केवल तुम और तुम अकेले हो। कल कहा था धर्म अर्थात अकेले हो जाना, कोई भी नहीं। डिनाई योर मदर, डिनाई योर फादर, एवरीथिंग, सब 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 बाहर है। ये है योग, रियल योग। इसी अवस्था में, सेंटरिंग की ही अवस्था में अनुभूतियां होती है, डिसेंटरिंग में अनुभूतियां नहीं है। तो मेडिटेशन का फायदा क्या है? सेंटरिंग, सेंटर पे पहुंच जाओ अपने। कहाँ हूं मैं? मेरा जो अस्तित्व है ये यहां, यहां हूं, यहां कोई भी नहीं है। ये जो भी है, जिनके विचार आते रहते हैं, किसी व्यक्ति का विचार आते हैं, उसको ये करना है, उसको ये देना है, उसको ऐसा करना है, ये सब बंधन है। सेंटरिंग मीन्स सब हटा दो, सभी को हटा दो, कुछ समय के लिए कम से कम। हार्मोनाइज विथ रियलिटी, तीसरा। अगला, मेडिटेशन से क्या होता है? फॉरगेट योर पास्ट रॉन्ग्स। मेडिटेशन से एक बहुत बड़ी चीज होती है भूलना। हम जो कुछ हमारे साथ आज तक हुआ है उसके ब्रेन पर इंप्रेशंस है, हमारा ब्रेन जो है उस पर इंप्रेशंस है, ये आत्मा। योग में क्या हो रहा है? अशरीरी अवस्था हो रही है, तो इनको जो कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, विचारों का, वो सब मिलना बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे ये जो ट्रैक्ट है, यहाँ पर ट्रेसेस है, यहाँ पे निरंतर अगर कोई चलता रहा तो वो रास्ता बना रहता है, और जाना ही बंद कर दिया तो फिर अपने आप वो खो जाएगा, उसमें घास फूस आ जाएगी, फिर पता नहीं चलेगा क्या है। अभी ऐसे बहुत सारे ट्रैक बने हुए हैं, काम के सूक्ष्म अंश के ट्रैक्ट, किसी से बहुत डीप गहरी अटैचमेंट उसका ट्रैक, पास्ट कोई हर्ट, कोई दुख, कोई ट्रॉमा, कोई दर्द, उसका एक ट्रैक बना हुआ है। जैसे ही खाली हो जाते हैं, मन अपने आप उस दुख की तरफ चला जाता है। किसी ने अपमान किया है, अपने आप मन खाली होते ही, सेवा से मुक्त होते ही मन कहाँ भागता है? उस दुख की ओर, वो दुख खींच लेता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको हटाया नहीं है वहां से। तो योग में वो अवस्था कि जिसमें हम एब्सोल्यूट अशरीर रहे, परमधाम, योग अर्थात परमधाम, एक ही परिभाषा है। बाकी वो जो भी है ना, ऐसे करके बाबा से ऐसे ऐसे बातें करना, ये सब, ये KG1 KG2 नीचे की अवस्था है। हाईएस्ट योग मीन्स आत्मा, अशरीरी, कुछ भी नहीं, निराकार। उसी अवस्था में ये सारे जो है ये डिलीट होने लगता है, पास्ट। नहीं तो हर व्यक्ति अपने पास्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, केवल सेवाओं के समय थोड़े देर के लिए भूला हुआ है बस। जैसे सेवा पूरी हुई, मन कहाँ भागता है? उसी दुख की तरफ। दुख बैठा हुआ है इंतजार में, तुम अपना सेवा पूरा करके आओ, फिर मिलेंगे पार्क में, जल्दी आ जाना। उसी के साथ है, खाली थोड़े देर के लिए जा रहे हैं और फिर वापस उसी के साथ आ जाते हैं, क्योंकि आदत है दुख के साथ जीने की, दर्द के साथ जीने की। और दूसरों को हम कहते हैं कि हमारे जैसा सुखी कोई नहीं। कल मुंबई ग्रुप से बाबा, इसीलिए दुविधा की अवस्था है। एक ब्राह्मण आत्मा हमसे कह रही थी, कैसे कोर्स कराए दूसरों को, हम खुद ही दुखी है, कैसे उनको बताए कि राजयोग ही सुख शांति का मार्ग है। तो योग में क्या होता है? पास्ट भूलता है। योग में क्या होता है? पुरानी यादें डिलीट होती है। ये राजयोग का एक बहुत अच्छा फायदा है। उसके बाद निगेटिव थॉट्स, योग की उतनी अवस्था में तो हमारे पास पॉजिटिविटी से हम भरे रहते हैं, तो ये जो कंटिन्यूस निगेटिव होते रहता है, कंटिन्यूस जिसको भी हम देखते हैं क्या विचार आते हैं उसके बारे में, पॉजिटिव आते हैं। भाव भावना दो चीज़ें बताई उस दिन अव्यक्त मुरली नीचे। एक व्यक्ति का खेत था और उसी के सामने एक झोपड़ा था, वहाँ एक बूढ़ी एक माँ थी और उसका बेटा था। तो ये जो व्यक्ति था खेती करता था, अमीर था, एक बार उसका फावड़ा खो गया तो उसको डाउट हुआ ये जो लड़का है ना इसी ने लिया है, ये जो सामने है ना बस इन्हीं ने लिया। और रोज रोज उस लड़के को देखता था और उस लड़के की हर हरकत इसको कन्फर्म कराती थी कि इसी ने ही लिया है, ज़रूर इसी ने ही चोरा है, बस कैसे अब करूँ वो नहीं समझ में आ रहा था। रोज उसको देखता था तो उसको ये लगता था ये देखो छुप के जा रहा है ना, मतलब इसी ने लिया, आंखें नीचे कर ली शायद इसी ने लिया, हर बात उसको कन्फर्म कराती थी कि इसी ने लिया इसी ने लिया। उसके प्रति एकदम नफरत भर गई उस बच्चे के प्रति। और एक दिन फावड़ा उसको वहीं अपने पीछे मिल गया और फिर उसने उस बच्चे को देखा कितना मासूम बच्चा है, बेचारा लगने लगा ये क्या हो गया। हमारे जो इम्प्रेशंस है दूसरों के बारे में 90% निगेटिव है, क्योंकि हम सोचते हैं इन्होंने काम ही ऐसे कर ऐसे किए हैं। और भगवान क्या कह रहा है, शुभ भावना है, ये कामना वो ऐसा वैसा, स्टॉक की कमी है। ये कब होगा, योग में। कल भी कहा था जो रोज निंदा करे उसके लिए क्या करो, तीन चीजें कौन कौन सी, जो निंदा करता है अपमान करता है झगड़ा करता है जबरदस्त हिसाब है जिसके साथ, नहीं सबसे पहला माफ करो नहीं माफी मांगो। सबसे पहला माफी मांगो, दूसरा उसमें शक्ति भरो क्योंकि अंदर कमी है ना, खालीपन है इसलिए तो बाहर चिड़चिड़ापन है, तीसरा धन्यवाद क्योंकि उसी के द्वारा हिसाब चुकतु हो रहे है, अच्छी बात है। और हर आत्मा के इर्द गिर्द ऐसी कुछ आत्माएं तो होगी, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो निगेटिव थॉट्स, निगेटिव जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसके बीच को ढूंढना है, वो कहाँ चालू हुआ, अचानक सामने व्यक्ति दिखा निगेटिव आया कहाँ से आया, तो अतीत में ज़रूर कोई घटना थी कि जिसमें ऐसा हुआ। हम उनके डिपार्टमेंट में गए उसने कहा उसके पास थी वस्तु फिर भी नहीं दी, बस वहीं से चालू हो गया वो या बहाना बना दिया क्योंकि इच्छा ही नहीं है करने की। एक भाई मधुबन से कहीं गए किसी स्थान पर, वहां से फोन किया बहन जी हमको उधर आना है, बहन जी ने कहा अरे पानी नहीं है। क्या करे, तो हमारे सूक्ष्म हिसाब है, ये जो तारे हैं हिसाब की दिखाई नहीं देती है पर हो रही है। पुराने पात्र मंच पर फिर उभर आए हैं, पुराने एक्टर्स जो है ना फिर एक्टर्स मंच पर फिर से आए हैं क्योंकि पुराना बहुत अधूरा अधूरा रह गया है सबका, नया नए वस्त्र धारण करके पुराने एक्टर्स ही फिर से स्टेज पर आ चुके हैं अपना हिसाब पूरा करने के लिए, कर्ज पूरा करने के लिए, चुकतू करने के लिए। तो क्या करता है मेडिटेशन से हमें वो, क्योंकि मेडिटेशन एकाग्रता की अवस्था है, उसी एकाग्रता में हम ढूंढ सकते हैं। नोट करके रख देना है दिन भर में क्या क्या काम करने हैं मेडिटेशन में, निगेटिव आया ही इस आत्मा के बारे में ये कल सुबह ठीक इसको ढूंढेंगे। ये दुख का संकल्प आया उसको भी नोट करके रखते हैं छोटी डायरी में, अब इस पर काम हमको दूसरे दिन सुबह अमृत वेला करना है। दिन भर काम करना मुश्किल है, नुमा शाम भी कर सकते हैं पर नुमा शाम का योग दिन भर में जो हुआ उसको मिटाने के लिए, इसके लिए दो बार चार्ट देना है बाबा को, एक तो रात्रि लिखने वाला चार्ट और एक चार्ट शाम के योग से पहले पूरा रिवाइज करो योग में बैठते ही कि आज सारे दिन भर क्या हुआ, अमृत वेला, फिर मुरली, फिर नाश्ता, फिर ये किया, फिर इससे मिला, फिर उससे मिला, फिर ये हुआ वो हुआ और अभी यहाँ हूँ। ये यहाँ रिवाइज कर दिया तो इसका असर फिर रात तक नहीं चलेगा, ये यहीं पे न्यूट्रलाइज हो गया बहुत सारी चीज़ें। फिर योग की शुरुआत और रात में लिखना वो डायरी, वो पहले दिन भी बताया था, पूरे 84 दिन का रोज़ लिखना है अपनी डायरी में कि आज क्या क्या हुआ, नोट करके रख रहे हैं, लिख रहे हैं ना कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, दिनचर्या लिखनी है, वो नहीं ज्ञान योग वाली डायरी नहीं, चार्ट वाला डायरी नहीं, दिनचर्या की डायरी लिखनी है, आज ये हुआ चलेगा, हाँ पर लिखना जरूरी है। चलो एक ही जैसा है, जैसा कल की दिनचर्या, मतलब कुछ नवीनता नहीं ला रहे हो इससे ये भी पता चल रहा है कि रोज एक ही जैसा हो गया, वो ही उठना, फिर ये किया, फिर वो किया, मतलब कुछ भी नवीनता नहीं थी, ये सब नहीं लिखना है। मेन चीज जो कुछ नया हुआ है, कुछ तो नई बात जो एकदम स्ट्राइक हो गई, नया व्यक्ति कोई भी मिला, कुछ तो लिखो, पर लिखना जरूरी है। तो निगेटिविटी एक दो बार चार्ट देना, एक योग से पहले नुमा शाम के, माना ओरल मौखिक, खाली बताना है कि ये हुआ, और फिर रात में एक लिखना ये दो बार, ताकि आज का पूरा हिसाब आज ही चुकतू हो जाए, नहीं तो आज जो बातें हुई वो अमृत वेला भारी कर देती है और वो निकाल देती है, जिसके साथ झगड़ा हुआ वही सामने आके बैठता है योग में, बाबा उधर वो सामने, उसको देखो कि इसको देखो पीछे से सकाज दे रहे क्या दे रहे इसमें ही चला जा रहा है टाइम, फिर बाकी काम कब करेंगे, बड़े बड़े काम करने हैं योग में। तो निगेटिविटी, पास से मुक्ति, और क्या क्या बताया, एस्केप, पहला बताया था एस्केप, वो कुछ सिचुएशन से हमको बाहर निकल जाना है। उन भगवान क्यों अच्छे से बता सकता है, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है, ये जो सर्कल है इसके बाहर होना चाहिए, और बीच बीच में जहां आप रहते हैं उस स्थान से भी अलग चले जाओ छुट्टी लेके, ताकि जहां रहते हो उसको अच्छे से स्टडी कर सको कि ये हो, दूर से हम अच्छे से देख सकते हैं, रोज तो देख ही सकते हैं, थोड़ा बाहर निकल के रोज पड़ोसी के घर में जाके, जैसे किसी गार्डन में चले जाओ, किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ जो आपकी जो रोज का जो सेवा केंद्र है, चाहे फिर घर है, ऑफिस है, उससे अलग हट के कोई एक स्थान हो जहाँ कुछ समय बिताना है, रोज कुछ समय, 15 मिनट 20 मिनट, कुछ भी, कोई गार्डन हो सकता है, टेरेस हो सकता है, कोई प्राकृतिक स्थान हो सकता है, वहाँ बैठकर हम इस स्थान को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ सर्कल ही जाकर ही उस सर्कल को जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान इस पूरी धरती के बाहर है, इसलिए वो एक एक चीज़ उसको पता है अच्छे से, वो डिस्टर्ब नहीं होता है यहाँ की कोई भी बात से, कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं करती, होमवर्क देता है अगली बार उसको पता है किसी ने नहीं किया है, अपना चुपचाप चालू कर देता है दूसरी मुरली, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि सर्कल से बाहर है, सर्कल से बाहर निकलने का प्रयास। तो योग में और क्या क्या होता है, एक तो एस्केप पहला बताया था, दूसरा सेंस ऑफ पर्पस, मुझे करना क्या है, तीसरा हार्मनी विथ रियलिटी, हम रियलिटी से सिंक नहीं है, वो सिंक करते हैं ना मोबाइल लैपटॉप में, वैसे सिंक हार्मोनाइज होना है कि ये रियलिटी है, ये ज्ञान है, ज्ञान अपनी जगह ऑपरेट कर रहा है, ये दिनचर्या अपनी जगह सेम ऑपरेट कर रही है, ज्ञान वैसे के वैसे, ये मुरली सुनना सुनाना ये चल रहा है, पर वो जो दुख है वो वहीं पड़ा हुआ है वैसा के वैसा ही 10 साल से, ये ज्ञान ने उसको स्पर्श ही नहीं किया, इग्नोरेंट नॉलेज। और चौथा, हम जो हमारी पास्ट मेमोरीज है इस ब्रेन में फिल है, जैसे ही आत्मा यहाँ से अलग हो जाती है वो मेमोरीज डिलीट होने लगती है, ये काम करना है। अगला नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसको वहीं नहीं छोड़ना है, नेगेटिव को तुरंत पॉजिटिव नहीं बनाया जा सकता है जब तक उसके ओरिजिन को नहीं ढूंढा गया, जिस व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी है उस व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा, कहां से चालू हुई है नेगेटिविटी, अगर ऐसी एक इवेंट नहीं है 10 इवेंट्स है, पर वो कुछ भी हो वो सब हमको अपने लिए न्यूट्रलाइज करना है, उस व्यक्ति के लिए नहीं अपने सुख के लिए, नहीं तो निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी हमारी चली जाती है, योग में हम ऊर्जा जमा कर रहे, नींद में ऊर्जा जमा कर रहे, निगेटिव विचार किए वो निगेटिव विचार ऊर्जा को खींच लेते, और फिर दुखी महसूस करते, शरीर में दर्द लगता है, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स चालू हो जाते। कई लोगों को यहाँ दर्द वहाँ दर्द, वो सब नेगेटिव थिंकिंग है कहीं ना कहीं। बाकी चीज़ें कल देखेंगे। 100 बातें। ओम शांति।